आई एम टेकिंग वेरी एक्सट्रीम एग्जाम्पल, लाइक कोई पैरालाइज्ड है, वो खुद से कुछ नहीं कर सकते और कुछ भी नहीं होगा, और ना ही उनको राइट इनपुट मिलने वाला, बिकॉज ब्रेन और बॉडी में कनेक्शन नहीं होता उस टाइम पे ड्यूरिंग पैरालाइज. सो एज अ फिजियो वी प्रोवाइड द राइट इनपुट एंड राइट मूवमेंट्स, जिससे एक मसल्स की रीलर्निंग हम उन्हें कहते हैं, री एजुकेशन कहते हैं मसल्स का, कि मसल री एजुकेट होते हैं टू वर्क द वे नॉर्मली जैसे वो पहले करते थे. तो दीज थिंग्स कैन नॉट बी डन ओनली विद मेडिसिन, यू नीड सम आउटसाइड हेल्प, एंड दैट एज अ फिजियोथेरेपिस्ट वी प्रोवाइड इट.
तो अभी हम पॉडकास्ट स्टार्ट करेंगे. आप आपके लिए बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है मेरे पास. एंड
ज़्यादा अमेजिंग भी ना, पर्सनल नहीं जाना, बाकी सब ठीक है.
आपको मुझे पता नहीं क्यों सभी लोग यही क्यों बोलते हैं मेरे को पर्सनल नहीं होना.
और एट द एंड होता है ये कि सब पर्सनल हो रहे होते हैं,
सब पर्सनल हो रहे
हैं, सब पर्सनल हो रहे होते हैं, सबने अपनी पोले खोली है.
सही है, सही है. अच्छा, तो मेरा सबसे पहला सवाल ये रहता है कि आप अपने बारे में हमारे ऑडियंस को इंट्रोड्यूस करो.
So, I am Dr. Asav Arora. I am a certified physiotherapist with a license from Indian Association of Physiotherapy.
Okay.
I have my own clinic named Pinnacle Physiotherapy in Amritsar near Alpha City Colony.
Okay.
I have been working there since 1.5 years. Earlier, I was working with other doctors, जिनके मैं अंडर काम कर रहा था. सो आई स्टार्टेड मैं देन आई सेट कि मैं अपना क्लिनिक करना है. तो इसलिए अब 1.5 years से मैं अपना क्लिनिक कर रहा हूँ, एंड by the grace of God, it's doing very well now. So it's everything because of Vaheguruji, nothing else.
Exactly. और मैं भैया का बहुत एक हैप्पी क्लाइंट भी रह चुका.
हाँ, yeah, he is the client actually.
Right. Okay. तो काफी लोगों को ना फिजियोथेरेपी होता क्या पता नहीं है. तो अगर आप ब्रीफली अगर डिस्क्राइब कर सकते हो कि फिजियोथेरेपी है क्या.
फिजियोथेरेपी को अगर मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूँ कि इट इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, फिजिकल एंड थेरेपी.
राइट.
दैट फिजिकल मीन्स यू नीड अ फिजिकल असिस्टेंस और अ टच और एनीथिंग जो आपको आपकी फिजिकल जो बॉडी है उसको एनहांस करे. आप बॉडी हैज़ मेनी हीलिंग मैकेनिज्म्स जो नेचुरली हील करते हैं बॉडी को.
राइट.
फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें कोई चोट लगी है तो बॉडी ने खुद हील करना है उसमें. तो वैसे ही अगर आपको कोई मसल स्प्रेन है या स्पैज़म है या कुछ भी है तो बॉडी हैज़ दोज ऑल दोज थिंग मैकेनिज्म जो उससे वो सेल्फ हील हो सकते हैं. इट्स जस्ट कि उन्हें राइट इनपुट नहीं मिलता, बिकॉज हमारी लाइफ ऐसी है, हमारा वी आर ऑलवेज बिजी इन आवर वर्क और एनी वे. कुछ हमारी कई बार हमारे काम ऐसे होते हैं कि हम खुद पर टाइम नहीं दे पाते.
राइट.
सो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट वी डू इज वी प्रोवाइड दोज थेरेपीज जो आपकी जो फिजिकल हीलिंग कैपेसिटी है उनको राइट इस इनपुट देके उनको बढ़ाती है.
Right.
और आपकी जो हीलिंग बहुत जल्दी एनहांस होएगी.
हाँ.
एंड दिस इज द बेसिक पार्ट. सेकेंड पार्ट आता है कि व्हेन योर बॉडी इज नॉट एबल टू डू सम वर्क, जस्ट आई एम टेकिंग वेरी एक्सट्रीम एग्जांपल, लाइक कोई पैरालाइज्ड है.
ओके.
सो वो खुद से कुछ नहीं कर सकते और कुछ भी नहीं होगा, और ना ही उनको राइट इनपुट मिलने वाला, बिकॉज ब्रेन और बॉडी में कनेक्शन नहीं होता उस टाइम पे ड्यूरिंग पैरालाइज. So as a physio, we provide the right input and right movements, जिससे एक muscles की relearning हम उन्हें कहते हैं, re-education कहते हैं muscles का, कि muscles re-educate होते हैं to work the way normally जैसे वो पहले करते थे.
ठीक है.
तो these things cannot be done only with medicine. You need some outside help, and that as a physiotherapist we provide it.
Right. मतलब कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जिसमें मेडिसिन की भी ज़रूरत ना पड़े फिजियोथेरेपी में.
फिजियोथेरेपी में मेडिसिन बहुत कम, वैसे तो अवॉइड ही करते हैं एज सच. तो वैसे फिजियोथेरेपिस्ट को मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज वी यूज़ आर नेचुरल एलिमेंट्स टेक्निक जो इसमें आराम से बिल्कुल ठीक हो सकता है.
हम अपनी बॉडी को यूज़ कर रहे हैं अपने आप को हील करने के लिए.
हाँ. एंड वी हैव प्लस सम दोज मशीन्स जिसको हम इलेक्ट्रोथेरेपी कहते हैं. दोज इलेक्ट्रोथेरेपी वर्क एज गुड एज अ पेन किलर.
ओके ओके ओके. तो आपकी जर्नी क्या है, आप फिजियोथेरेपी में कैसे इंटरेस्टेड हुए और आपने क्यों इसको अपना करियर बनाया.
एक्चुअली ना इसके दो आंसर्स हो सकते हैं. एक होते हैं एक पीआर आंसर जो भी सबको सुनने में अच्छा लगे, और एक सच है.
तो पीआर भी दे दो, सच वाला भी दे दो, दोनों दे दो.
जो पीआर आंसर है जो इसका ये होगा कि हाँ, कि आई वॉन्ट टू हील एवरीवन विद माई सर्विसेज, आई वॉन्ट टू सर्व माई उसका माई पेशेंट्स
कम्युनिटी.
ये पी आर आंसर है. जो एक्चुअल में ये हुआ था कि वह तब हमारे टेस्ट था ऑल इंडिया PMT होता था, जिसको हम नीट कहते हैं.
ओके.
तो मैंने एग्ज़ाम दिया, मेरा रैंक को इतना अच्छा नहीं आया, टू बी फ्रैंक.
अच्छा.
नहीं इतना अच्छा रैंक आया. सो टारगेट मेरा MBBS में ही था. बट रैंक ना अच्छे के कारण सो मैंने ट्राई नहीं किया. मैनेजमेंट सीट मिलती थी बट वो बहुत कॉस्टली हो जाना था. बट वो इट वॉज राउंडिंग अबाउट अराउंड 50 लाख तो मेरे स्टडी में लगने वाले थे. सो आई सेड कि नहीं, इट्स नॉट वर्थ इट टू स्पेंड 50 लाख, नहीं हो पाएगा घर में, घर वालों को इतने पैसे भी नहीं डालना. देन आई सॉ ऑल दोज ऑप्शंस एंड मुझे पता लगा कि अमृतसर में ही गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है एंड वेरी वेल एस्टेब्लिश डिपार्टमेंट है, जहाँ से बच्चे सिर्फ पंजाब के नहीं हैं, वहाँ पे मुंबई, कर्नाटका, हैदराबाद, ये वो ऐसी जगह से बच्चे पढ़ने आते हैं. आई नेवर न्यू अबाउट इट एंड इट वॉज वेल एस्टेब्लिश अंडर डॉक्टर जसपाल सिंह संधू, जो अब बीसी हैं अब जी एन डी यू के.
ठीक है.
सो मैंने पता किया एंड सीट ईजिली मिल गई. इतने इतना तो रैंक ठीक आया था कि सीट मिल जाए, तो ईजिली मिल गई आराम से.
राइट. ऐसे आपकी जर्नी स्टार्टिंग. ये मैं एक आपको ऑनेस्टी बहुत अच्छी लगी कि पहले पीआर वाला जवाब दे रहा हूँ फिर रियल वाला जवाब.
दो आंसर है.
सही है, ग्रेट. अच्छा, तो फिजियोथेरेपी में किस तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं?
फिजियोथेरेपी में आजकल काफी कुछ ब्रॉड हो गया.
अच्छा,
जब हमने स्टार्ट किया था स्टडी करना तो हम सिर्फ दो चीज़ पे डिपेंड करते थे, एक मैनुअल थेरेपी एंड इलेक्ट्रोथेरेपी.
मैनुअल
एंड इलेक्ट्रो.
इलेक्ट्रो. ओके.
मैनुअल में ऐसे होता है कि लाइक जस्ट यूजिंग योर हैंड्स.
ओके.
फॉर एग्जांपल योर स्ट्रेचिंग, योर स्ट्रेंथनिंग या कुछ भी ऐसा. एंड सेकेंड इलेक्ट्रोथेरेपी जिसमें हम मशीन्स यूज़ करते हैं, उसमें दो तीन मशीन्स होती हैं जो बेसिक हैं. वो दो तीन मशीन्स हैं, टेंस एंड अल्ट्रासाउंड एंड स्टिमुलेशन.
Okay.
ये तीन बेसिक मशीन्स हैं जो हैं. ये तब हमने स्टार्ट किया था, बीए था, हमने इतना ही पढ़ा था. विद इन दीज 10 ईयर्स ऑफ माय एक्सपीरियंस इसमें बहुत कुछ ऐड हो गया. वी हैव स्टार्टिंग यूजिंग नीडल्स, वी हैव स्टार्टिंग यूजिंग कप्स.
मैंने देखा, सॉरी आपको इंटरप्ट करा, मैंने रिसेंटली किसी की स्टोरी देखी थी तो उन्होंने ऐसे नीडल्स लगाए थे, दर्द नहीं होता,
पर पेन नहीं होता.
अच्छा.
वो एक्चुअली नीडल बहुत फाइन होता है, जस्ट लाइक योर हेयर, इतना पतला होता है.
अच्छा.
नीडल हम उसको उसमें प्रिक करते हैं, आपको पता भी लगता है,
पता भी नहीं लगता,
नहीं पता लगता है वो, लेकिन वो प्रिक करने से ही आपका जो पेन इट्स लाइक ऐसे गायब हो जाता है. यू विल नेवर नो कि वहाँ पे कुछ था भी ऐसा.
अच्छा.
ये ऐसा मैजिक है,
मतलब जो मसल सोरनेस होती है उसके लिए,
मसल सोरनेस के लिए. या फॉर एग्जांपल कोई आपको कोई मसल में नॉट है जो तंग कर रही है बार बार.
अच्छा.
आप कई बार होता है कुछ जैसा प्रेस करते हैं ना, वो दर्द होता है कोई पॉइंट. फॉर एग्जांपल नेक में बहुत कॉमन होता है, हम यहाँ प्रेस करते हैं तो बहुत दर्द होता है. सो उसमें नीडल का ऐसा है कि हमने उस पॉइंट पे ही नीडल लगाना है, उसने प्रिक करके वहाँ पे उसको, वैसे वो सिंपल लैंग्वेज बोलो, वो सारा जो नॉट बना है वो डिसॉल्व हो जाता है.
अच्छा.
इन द ब्लड.
ओके.
बिकॉज हम प्रिक करके वहाँ पे उसको ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ा रहे हैं वहाँ पे.
ठीक है.
तो ब्लड में डिजोल्व होके वो मसल रिलैक्स हो जाता है.
अच्छा अच्छा.
एंड जस्ट लाइक जिसमें मतलब कि ये चीज़ें ना हमारी भी हेल्प करती हैं, जहाँ पे हमने थंब का इतना हमने फोर्स यूज करना पड़ना था वहाँ पे हमें सभी रिलीज करने के लिए. सो दीज थेरेपीज हेल्प इन इंस्टेंट रिलीफ ऑफ पेशेंट एंड हमारी भी मेहनत थोड़ी कम हो जाती है. दोनों चीज़ें हैं.
राइट. तो लाइक आप और भी बता रहे थे, और भी चीज़ें होती है, और भी ट्रीटमेंट्स होते हैं.
अभी रिसेंटली अभी बहुत ट्रेंड शुरू हुआ है कायरो का, कायरोप्रैक्टिक, जिसको वो सिंपल अगर बोलोगे देखे ना तो जो पटाखे निकालते हैं बॉडी के पटाखे निकालते हैं. तो ये चीज़ें अभी फिजियोथेरेपी के अंडर ही आती हैं एक्चुअली. ये ऐसा कुछ नहीं है कि डिफरेंट चीज़ें हैं.
अच्छा, अलग नहीं है.
ये सब ब्रांचेज नहीं है, ये एज अ होल हमें यूज़ करना चाहिए. हो ये रहा है कि सब इसको अलग अलग यूज़ कर रहे हैं. जैसे कि अगर एक बंदा अगर कपिंग है तो कपिंग ही कर रहा है, उसको कंबाइन नहीं कर रहा पूरी ट्रीटमेंट के साथ. सो दीज थेरेपीज शुड बी कंबाइंड विद योर बेसिक मैनुअल एंड इलेक्ट्रो. जब हम इसके साथ कंबाइन कर देते हैं ना तो ये ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है.
और आप सब चीजें कवर,
सब चीजें कवर कर रहे हैं.
सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ कपिंग कर रहे हो या नीडलिंग नहीं कर रहे.
ऐसा नहीं हो रहा कि भाई मैंने कपिंग की है तो भाई मैंने भेज दिया घर जॉब, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ हो गया. तो कपिंग के साथ हम स्ट्रेचिंग भी दे रहे हैं, अगर तब भी पेन में थोड़ा आपको और चाहिए दें, उसके बाद इलेक्ट्रोथेरेपी भी ऐड कर रहे हैं,
ऐड कर रहे
हैं ताकि पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट हो. बिकॉज पर्सनली आई वांट कि पेशेंट मेरे पास कम से कम विजिट्स में ही ठीक हो. अगर एक पेशेंट एक विजिट में ठीक हो सकता है तो मैं करूँगा.
राइट.
वो बेस्ट है.
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज फिजियोथेरेपी हेल्प इन प्रमोटिंग ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग.
जस्ट लाइक आई सेड अर्लियर कि फिजियोथेरेपी आपकी जो नेचुरल हीलिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाता है. सो इसमें मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, मुझे समझाना इजी है। हाँ, एग्जांपल लेके चल, समझाना इजी थी है। जैसे आजकल डी एन एज में हमारा सर्वाइकल स्टिफनेस, इसको सर्वाइकल एरिया को, इसको सारा एरिया को सर्वाइकल बोलते हैं हम।
okay.
तो इस एरिया में स्टिफनेस कहीं भी होगी ना, तो हम ब्रॉड टर्म यूज़ कर लेते हैं कि आपको सर्वाइकल है।
अच्छा,
ये हम भी नहीं है किसी वेल स्टडीड वो लर्नड डॉक्टर के पास चल रहे ना, वो भी सिंपल लेमन टर्म में बोलेगा कि आपको जो सर्वाइकल है।
ठीक,
तो इट इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्म। तो कमिंग बैक टू द योर क्वेश्चन, सो अगर आपको फॉर एग्जांपल सर्वाइकल है, सो उसमें स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है एंड यू नीड्स, अब आप यू विल प्रेफर कि जो हमारा जो बेसिक जो हमारी क्या कहते हैं उसको नॉलेज है, हम कहते हैं कि नहीं हम मेडिसिन ले लेते हैं, वील अदरवाइज गो टू ऑर्थोपेडिशन, नहीं तो केमिस्ट तो है ही है, एक दो मेडिसिन तो मिल ही जाती है। दोज मेडिसिन वर्क ऑन योर सिम्टम्स, मतलब कि आपको सिम्टम्स क्या हैं, आपको स्टिफनेस, आपको वो है दर्द हो रही है, आपको इरिटेशन हो रही है, आपको रिलैक्स नहीं फील कर रहा, लेकिन उसका कॉज क्या है उसको आपको नहीं पता। सेम मेडिसिन भी उसी चीज़ को काम करेगी। आपने यू टेक अप टुक अ पेन किलर, पेन गायब, मसल रिलैक्सेंट खाया, मसल रिलैक्स हो गया, लेकिन जो उसका कॉज है वो वही का वही है। जब तक मेडिसिन का असर है, चाहे वो 6 घंटे 8 घंटे 12 घंटे इतना असर रहता है, तब तक तो यू आर परफेक्टली फाइन, कुछ फील भी नहीं होगा जैसे कुछ, बिकॉज इट इज दोज मेडिसिन आर जस्ट ब्लॉकिंग योर सिम्टम्स। नाउ अब हमारा फिजियोथेरेपिस्ट में हमने क्या काम आता है, बिकॉज वी वर्क ऑन द रूट कॉज ऑफ योर प्रॉब्लम। अब रूट कॉज बहुत हो सकते हैं, यू नीड दैट मेड नॉलेज की प्रॉपर एक एनाटमी की नॉलेज होनी चाहिए आपको कि वो रूट कॉज कैसे हो सकता है। और रूट जैसे अब सिंपल एक ब्रॉड टर्म में सर्वाइकल जैसे मैं कह रहा था, अब उसके अंडर रूट कॉज बहुत सारे हैं।
अच्छा,
फॉर एग्जाम्पल किसी का पॉस्चर ऐसा है, किसी की थोड़ा कुछ इशू है, कुछ अंदर वो स्पाइन लेवल पे कोई इशू है, यू नीड दैट मच नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू वर्क ऑन दैट। एंड अगर आपको रूट कॉज पता लग गया एक बारी, देन ट्रीटमेंट इज हार्डली मैटर, ट्रीटमेंट बहुत जल्दी हो जाती है।
right. तो जैसे ये जो पेन किलर्स होती है ये जेनरिक होती है ना, कोई भी पेन हो तो आप वो खा लो, बट जब फिजियोथेरेपी की बात आती है तो हर बंदे के अलग अलग रूट कॉजेज हो सकते हैं, राइट, और आप उसको ट्रिगर करते हो ताकि उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो बाद में।
हाँ, राइट, हाँ, बिकॉज फिजियोथेरेपी एक ऐसी ट्रीटमेंट है जो भी आपके जो मसल और बोन की जो इश्यूज है ये उसका परमानेंट ट्रीटमेंट है।
परमानेंट ट्रीटमेंट है, राइट,
ये ऐसा नहीं है कि भाई आपने 4 दिन फिजियोथेरेपी कराई और फिर वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इफ़ यू फॉलो माई होल गाइडलाइंस की, हाँ, कि जो मैं आपको होम एक्सरसाइज बताऊँगा जो आपने घर पर ही फॉलो करनी है, देन आई कैन अश्योर यू ये प्रॉब्लम वापस नहीं आएगी, चाहे कुछ भी लेके आओ मेरे पास।
अब कुछ ऐसे कॉमन मिसकंसेप्शंस लोगों को जो है फिजियोथेरेपी के रिगार्डिंग।
अच्छा,
हमने इसके बारे में बात भी करी थी।
हाँ, ये थोड़ा ना हर फिजियोथेरेपिस्ट के साथ टची सब्जेक्ट होता है एक्चुअली ये।
अच्छा,
मिसकंसेप्शंस
जी,
बिकॉज अराउंड मैंने आई स्टार्टेड फिजियोथेरेपी, ग्रेजुएशन मैंने की थी 2010 में स्टार्ट की थी।
ओके,
11 में स्टार्ट की थी मैंने।
अच्छा,
तो तब अवेयरनेस इतनी बिल्कुल नहीं थी जो आज 2023 में ना 13 साल बाद वो ज़मीन आसमान का फर्क है।
आपको कि इन जनरल लोगों को?
मुझे भी नहीं थी इतनी, सच में बताऊँ तो जनरल लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं थी। शायद कुछ जो गिने चुने लोग हो गए जिनका कुछ डॉक्टर्स के साथ ही चीज़ों में प्रॉब्लम पढ़ पाला पड़ा होगा, उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, बट मोस्टली लोगों को नहीं पता था। अगर मैं किसी को समझाना करता था कि फिजियोथेरेपी है तो मुझे अगर सुनना पता, अच्छा मालिश वाले, ये सच्चाई है हम सुन, और अनफॉर्चुनेटली हम अभी भी ये चीज़ें सुननी पड़ती हैं कि अब जैसे मेरा क्लिनिक है वो थोड़ा, उसको हम थोड़ा रूरल एरिया बोल सकते हैं।
ओके,
बिकॉज वहाँ पे दोनों तरह के लोग आ रहे हैं, अर्बन भी और रूरल भी आ रहे हैं,
सेंटर में अर्बन और
रूरल दोनों आ रहे हैं। तो जब रूरल एरिया को आता है ना, अब चलो हम ऑफेंड नहीं हो सकते बिकॉज उनको नहीं आइडिया कोई,
मैं यही बोलने वाला था, आपको बुरा नहीं लगता वैसे भी कुछ बोल,
नहीं हो सकते बिकॉज उनकी भी गलती नहीं है, अनअवेयर है, उनकी गलती नहीं है। तो जब वो कहते हैं ना कि नहीं अच्छा तुम मल्ला ना ठीक करोगे, जो वहाँ पे साइकोलॉजी होती है, बिकॉज हर छोटी जगह पे कोई ना कि वो मलने वाला बैठा हुआ जिसको कहता है पट्टियाँ बांध के मैं ठीक करके ठीक कर दूंगा, होता कुछ नहीं, काम और खराब हो जाता है, वो बात और है। तो वो भी हमें पूछते हैं कि आप मलना ठीक हो रहे हैं, मैं कहा नहीं, मलने के अलावा सब कुछ करेंगे, वो नहीं करेंगे,
वो नहीं करेंगे।
लेकिन हाँ, ट्रीटमेंट की गारंटी है, रिजल्ट की गारंटी है, ये है।
जैसे मेरे फैमिली मेंबर्स में भी पहले ऐसे कुछ भी होता था या फिर ऐसे मसल फूली वो तो मालिश के लिए जाते थे, और वो मैं देखता था 2 हफ्ते बाद फिर उनको वही प्रॉब्लम
आ जाती है,
तो उनको मालिश वाले के पास नहीं जाना, आपके जैसे फिजियोथेरेपिस्ट के पास,
बिकॉज फिर वही आ गया, बात वही आ गई है। तो मालिश वाले ने जो आपके सिम्टम्स थे उस पर काम किया कि आपको पेन थी और सिंपल बोलो जकड़न जैसे हम बोलते हैं वो लेमन टर्म में जकड़न बोल देते हैं कि अकड़ गया
तो
मालिश वाले ने उस पे काम किया। अच्छा। रूट कॉज वही है। हाँ। रूट कॉज उसने वापस आना ही आना, चाहे वो दो हफ्ते बाद आ जाए, दो महीने आ जाए, वो वही रहने वाला है।
राइट
यू हैव टू वर्क ऑन द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम।
यस, जैसे हम दोनों एक क्रिकेट टूर्नामेंट का पार्ट थे जहाँ पे आप एज अ फिजियोथेरेपिस्ट
सबसे पहले था मैं।
हाँ, राइट।
टीम मेंबर की तो बारी नहीं आई, खेलने की तो बारी आई नहीं मेरी।
राइट। तो क्वेश्चन यही था कि फिजियोथेरेपी का स्पोर्ट्स में कितना योगदान और कितनी इम्पोर्टेंस है वहाँ पे, क्योंकि लोगों को इसका आइडिया ही नहीं है, इंडियन क्रिकेट टीम हो गई, फुटबॉल टीम हो गई, कोई भी स्पोर्ट्स की टीम होगी, सबके पास कोई ना कोई फिजियोथेरेपिस्ट होता ही होता
है। ये कि अब क्रिकेट ने थोड़ा वैसे फिजियोथेरेपी को फेमस कर दिया वैसे।
हाँ, क्रिकेट ने एक्चुअली,
थैंक्स टू आईपीएल, सीधी सी बात है। अब आईपीएल के थ्रू एंड क्रिकेट के थ्रू अभी बहुत ही फिजियोथेरेपी आइडिया हो गया अब लोगों को, एक ऑन फील्ड फिजियोथेरेपिस्ट हमेशा वहाँ पे होता ही है। तो कोई भी अगर ऑन फील्ड आपको भी इंजरी हो रही है, जैसे एक क्रिकेट, मैं क्रिकेट एग्जांपल लेके चलता हूँ, क्रिकेट एक बहुत फास्ट गेम है, यू आर ऑलवेज रनिंग, यू आर ऑलवेज एंड दैट टू इन अ वेरी स्वेटी एनवायरनमेंट, बहुत ह्यूमिडिटी होती है, आपके मसल्स बहुत जल्दी क्रैम करते हैं, उस पॉइंट पे आपको मेडिसिन काम नहीं करेगी। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैच चल रहा है, उसमें मेडिसिन दे भी दोगे ना, उसको वर्क करते करते आधा घंटा लग जाए तो मैच सब तो खत्म हो जाएगा। तो एज अ फिजियो बहुत रोल होता है कि जब जैसे कुछ भी अगर क्रैम्प आ गया, कुछ स्प्रेन आ गया, तो फिजियो ने उसी टाइम, उनके पास सब एलिमेंट्स होती हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई बैंडेजिंग कर देंगे या स्ट्रेचिंग की है, जैसे क्रैम्प हो रहा है, स्ट्रेचिंग करके विद इन 5 मिनट्स दैट प्लेयर इज बैक ऑन फील्ड रादर देन वेटिंग कि वो उसकी मेडिसिन, जो मेडिसिन खाए फिर उसका मेडिसिन का असर किक इन हो, उसका कोई फायदा नहीं, तब तक वो टाइम निकल जाएगा एंड वो मैच कहीं का कहीं पहुँच जाएगा। सो विद टाइम एज अ फिजियो बहुत रोल बढ़ा है इन मेजर टूर्नामेंट्स, इन मेजर लीग्स। फिजियो अब टीम्स हायर अ प्रॉपर फिजियोथेरेपी, अपना एक टीम होती है, जैसे एक फिजियो नहीं होता, उसमें एक प्रॉपर टीम्स है जो एक हेड स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट उसे कहते हैं।
अच्छा।
साथ में एक मिसयूज डेफिनेटली सेकंड, और थर्ड आता है जो आपकी जो स्पेशली ये कायरो और कपिंग में ही स्पेसिफाई करता है।
अच्छा।
तो वो तीन लोगों की पूरी टीम बननी शुरू हो गई है उसमें, अब एक बंदे को भी नहीं हायर करते, अब पूरी तीन लोगों की टीम बन गई, तीन से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तीन से कम नहीं है।
अच्छा, ये नहीं पता होगा लोगों को अभी, हम लाइक मुझे भी क्रिकेट का ये पता है, एक फिजियोथेरेपिस्ट तो होते हैं जो ग्राउंड पे, बट और भी इतनी सारी चीज़ें।
हाँ, अब आई विल टेक एन एग्जांपल, मेरे सीनियर, काफ़ी सीनियर थे तब वो, हिज नेम इज़ आई थिंक अरविंद निकम, आई थिंक सो, इज़ अ वेरी सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट ऑफ माइंड। वो हमारे जब हम बैचेस कर रहे थे, वो मास्टर्स कर रहे थे हमारे यहाँ पर स्विच डिपार्टमेंट में। सो राइट नाउ ही इज़ वर्किंग विद साइना नेहवाल। लास्ट ईयर ड्यूरिंग कोविड आई गेस उनको, साइना नेहवाल को इंजरी हुई थी, काफ़ी मेजर इंजरी, शोल्डर थी आई गेस। सो शी नीड अ टोटल 6 months ऑफ रिहेबिलिटेशन जस्ट टू गेट बैक ऑन द फील्ड, क्योंकि अगर वो रिहेबिलिटेशन नहीं होता देन शी हैड टू गो अंडरगो सर्जरी, एंड सर्जरी के कारण वो करियर ख़राब भी हो सकता था। सो ऑल थैंक्स टू डॉक्टर अरविंद एंड हिज टीम, जिन्होंने अच्छे से काम किया एंड साइना इज़ बैक ऑन द फील्ड एंड प्लेइंग वेरी गुड।
राइट। एक तो जैसे हम सुनते हैं कि जब कोई इंजरी वगैरह हो जाती है, मेरा पर्सनल सवाल है, तो वो एक आइस बकेट वाला होता है ना कि आइस में वो पैर रख लो, उसकी क्या, उसके पीछे क्या साइंस होती है?
उसकी एक्चुअली साइंस ये है कि जब
ये भी फिजियोथेरेपी,
हाँ, ये फिजियोथेरेपी में आता है डेफिनेटली। इसमें साइंस है कि जब हमारी बॉडी में कोई इंजरी होती है ना, तो बॉडी के ना कुछ वो हीलिंग मैकेनिज्म है, उसका एक प्रोटोकॉल है पूरा जो बॉडी ने फॉलो करना।
अच्छा।
फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई चोट लगी है, जैसे किसी ने आपको जोर से कोई पिंच कर दे।
अच्छा।
क्या होगा, वो सारा एरिया पहले रेड हो जाएगा,
रेड हो जाएगा,
और उस पर थोड़ा वार्म फील होगा कहीं, और अगर बहुत ज़्यादा जोर से पिंच किया था तो वहाँ पर स्वेलिंग भी हो सकती है। सो दीज आर योर नेचुरल मैकेनिज्म जो बॉडी ने करने ही करने। लेकिन उसका एक नुकसान ये होता है कि आपकी जो एक वो थोड़ा स्लो हो जाती है हीलिंग, बिकॉज हम बड़ी फास्ट पेस ऑफ लाइफ में हैं अब, तो हम इतना टाइम नहीं दे सकते कि वो बॉडी इतना नेचुरली वो करे। तो कोल्ड थेरेपी में ये फायदा होता है कि जो ये सिम्टम्स आए थे ना,
क्या बोलते हैं इसको,
इसको कोल्ड थेरेपी कहते हैं,
कोल्ड थेरेपी बोलते हैं,
या आइस थेरेपी,
आइस थेरेपी, हाँ,
क्रायोथेरेपी जो टेक्निकल टर्म है वो क्रायोथेरेपी,
क्रायोथेरेपी
इसमें हम लेमैन में हम कोल्ड थेरेपी, आइस थेरेपी या आइस बकेट बाथ कहते हैं उसको, जो अब क्रिकेट सब ने यूज़ करना शुरू कर दिया। तो उसमें ये है कि जो अगर बॉडी जो अपनी नेचुरल हीलिंग मैकेनिज्म शुरू कर रही थी, जो उसके सिम्टम आने थे, पेन है, स्वेलिंग है, वो कोल्ड से सबसाइड हो जाते हैं।
अच्छा।
उसके वो आपको तंग नहीं करेगा, लेकिन बॉडी अपना काम करती रहेगी, हीलिंग करती रहेगी, वो चीज़ तंग नहीं करेंगे।
ठीक है ठीक है।
पहले करने की जरूरत नहीं पड़ती थी बिकॉज पहले इतना वो फास्ट पेस लाइफ में नहीं होती थी।
हाँ।
अब जरूरी हो गए ये चीज़ें।
वट एडवाइस डू यू हैव फॉर इंडिविजुअल्स हु आर लुकिंग टू प्रिवेंट इंजरीज और मेंटेन देयर फिजिकल वेलबींग? ये ना इंस्टा पर हमने सवाल डाले थे, तो उनमें से एक सवाल ये।
अच्छा, काफ़ी वैसे ब्रॉड टर्म क्वेश्चन है ये। तो मेन अगर सबसे पहले कहूँ फिजिकल फिटनेस पे आता है कि आपकी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस कैसे है। कार्डियोवैस्कुलर में आता है आपका हार्ट एंड पल्मोनरी में आता है आपके लंग्स है वो। ये दोनों चीज़ें इस लाइक कि सपोर्ट सिस्टम, ये जैसे आपका वेंटिलेटर है वो चीज़ है आपका।
ठीक है।
तो यू नीड कि ये सबसे ज़्यादा फिट रहे।
ओके।
तो इसके लिए डेफिनेटली रनिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग, स्विमिंग बेस्ट है आजकल के टाइम में, गर्मियों में स्विमिंग तो वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज मानी जाती है स्विमिंग। एंड उसके सेकेंड नंबर पर आता है एक ना हमारी बुक में ना एक चार्ट है, उसमें लिखा हुआ है कि कौन से नंबर पे एक्सरसाइज कैसी है, उसका रेट ग्रेडिंग दी हुई है।
अच्छा,
एक्सरसाइज का। सो जीरो इज लाइक व्हाट वी डू इन एट अ होम, थोड़ा बहुत जो हाउस होल्ड चोर्स होते हैं, जो जैसे कुछ खाना बना लिए वो, दैट कम्स इन जीरो। उसकी कोई वैल्यू नहीं है।
अच्छा।
सबसे टॉप पे अब कहते हैं ना सबसे अच्छी जो अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए जो एक्सरसाइज है वो आती है स्विमिंग, स्किपिंग एंड साइकिलिंग ऑन अ हिल,
ऑन अ हिल
अपवर्ड।
ओके।
ये तीन चीज़ें हम टॉप पे गिनते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है जो आपके हार्ट के लिए फिटनेस के लिए, आपके लंग्स के फिटनेस के लिए। अगर आपकी दो चीज़ें सपोर्ट सिस्टम है, दो चीज़ें अच्छी चल रही हैं, बॉडी को कुछ नहीं होने वाला।
अच्छा। ओके। और जो लोग अपने 40s में या फिर 30s में हैं या फिर ओल्ड 50s में भी कह लो, ये जो तीन ब्रैकेट्स हैं, उनको क्या करना चाहिए?
कोई भी जो आपको पसंद है फिजिकल एक्टिविटी, कोई एक हॉबी पकड़ लो।
हाँ।
जैसे कई होते हैं, कईयों को शुरू से जिम का शौक था।
हाँ।
ऐसा कुछ भी नहीं आपको 40s 50s में आके जिम छोड़ना है, ऐसा हाँ, कोई रूल नहीं है। जबकि रिसर्च अभी रिसेंटली यही कह रही है कि जितना आप जिम कर रहे हो और हार्ड जिम कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। जस्ट लाइक आप वेट्स पूरे अगर 10-20 kg वेट उठा सकते हो एट एज ऑफ 50, मत छोड़ो,
मत छोड़ो,
उसको करते रहो। रिसर्चेस हैव शोन कि जितना आप हैवी वेट उठा रहे हो ना, आपकी बोन्स उतनी ही स्ट्रॉन्ग है उस एज में जाके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं 30 में हूँ, इफ आई स्टार्ट वर्किंग ऑन माई अपना ये मसल बिल्डिंग में, प्रॉपर हैवी वेट्स लगा रहा हूँ, अच्छे से जिम में लगा रहा हूँ, एट द एज ऑफ 50 और इवन 60 मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो मेरी जो बोन्स हैं, मेरा जो मसल मास है, एक नॉर्मल सेडेंटरी लाइफ वाले से ज़मीन आसमान का फर्क होगा, मेरा बल्क ज़्यादा होगा। एंड जितना मेरा मसल का बोन्स का बल्क ज़्यादा है, उतनी मैं इंजरी प्रोन कम हूँ उस एज में आके।
ओके।
हम होता ये है कि डेली भाग दौड़ में ना हम सब कुछ छोड़ देते हैं। जैसे वो होता है ना, जैसे हमारी इंडियन मेंटेलिटी है कि चलो अभी अब फैमिली बसाने का टाइम आ गया, तो हमें वो ना सैक्रीफाइस करने पड़े सारे, वो सैक्रीफाइस नेचर ना डाली हुई हमारे अंदर कि नहीं अब ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, वो भी छोड़ दो, नहीं अब काम करना है ये। उस चक्कर में जब आप 50-60 पहुंचते हो तो आपकी बॉडी के पास कुछ रहता ही नहीं है,
तब गिल्ट होता होगा ना।
तब गिल्ट आप बहुत को होता है, गिल्ट होता है क्योंकि बॉडी के पास रहता ही नहीं, बॉडी बेचारी वो होती है आज ये दर्द हो रही है, वो दर्द हो रही है। दैट इज नॉट एन एफिशिएंट वे टू लिव योर लाइफ।
राइट।
यू नीड एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स डेली
एवरी डे।
एंड अगर आप हाफ एन 45 मिनट्स निकाल रहे हो ना अपने लिए, देन आपको कुछ भी नहीं होगा,
मोर देन सफिशिएंट
होता है।
राइट।
बाकी सब अपनी हॉबी है, सबको अलग कुछ पसंद है, किसी को जैसे बताया जिम पसंद है, किसी को रनिंग पसंद है, किसी को साइकिलिंग पसंद है, किसी को योगा पसंद है, या किसी को हाँ क्रिकेट खेलने पसंद है, तो उसको मत छोड़ो, करते रहो,
कंटिन्यू
करने दो।
जैसे मैंने ज़्यादातर देखा है जो हमारे पेरेंट्स की एज के लोग होते हैं, उनको ये डर होता है वो जिम इसलिए नहीं कर रहे होते क्योंकि कोई इंजरी ना हो जाए उस एज पे, ये हो जाए। बट अगर एक प्रोफेशनल के अंडर करी जाए, सुपरविजन में करी जाए, तो उल्टा ग्रो ही कर रही है आपके बोन्स एंड मसल्स।
हाँ, अगर एक अगर आपको ट्रेनर प्रॉपरली उसमें सर्टिफाइड है
एंड
ही नोज किस एज को कैसे एक्सरसाइज करानी है, तो देन तो वंडरफुल वो होगा, आपके लिए रिजल्ट आएंगे। एंड अगर आपको तब भी नहीं पता ना, यू कैन विजिट अ फिजियोथेरेपिस्ट ऑल्सो। वी हैव थोड़े बहुत जो हल्के फुल्के वेट्स होते हैं, फ्रॉम 2-5 kg में आपका वेट्स हम रखते हैं। एंड कभी कभी स्टार्ट करने के लिए 2-5 kg वेट्स मोर देन नफ फॉर 50+ लोगों के लिए ना स्टार्ट। सो आपको अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देने के लिए कोई वो नहीं होती, एज नहीं होती आपको स्टार्ट करने के लिए। आपको कुछ वो नहीं है कि हाँ कि अब मैं 50 का होगा, नहीं मेरे से अब नहीं होगा, सर कुछ नहीं है। अब 2 kg स्टार्ट कर लो।
चलो एक ये क्वेश्चन है 30 seconds में, ये जो एज ब्रैकेट मैंने आपको बताया, इनको मोटिवेट कर दो कि फिटनेस पे ध्यान देना ही देना।
देखो मैं सिंपल कहूंगा कि अगर आप रोज रोज कोई डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से चक्कर नहीं लगाना चाहते हैं तो अभी शुरू हो जाओ, बेस्ट है। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे पास जितना काम हो उतना अच्छा है।
और ऐसे नहीं बोलते लोग, रुकते जाते जितने लोग और
नहीं,
हैं।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं।
ग्रेट, वाओ, ओके। तो अभी थोड़ा सा टेंजेंट चेंज करूंगा कॉन्वर्जेशन का। तो आपको क्या लगता है कि आजकल ये एक नीड बन चुके है, एक नेसेसिटी बन चुके हैं कि हर डॉक्टर को, हर नहीं कहूँगा, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स को जिनको ग्रो करना है उनको डिजिटल मीडिया को यूज़ करना ही पड़ता है, सोशल मीडिया को यूज़ करना ही पड़ता है। आपके क्या थॉट्स हैं इस पर?
मैं थोड़ा अपने को यंग कैटेगरी वाले डॉक्टर मान लेता हूँ, जो जो तो हमारे जो मेरे एज ग्रुप के होंगे ना, जो यंग आ भी रहे हैं या फिर 30 है, 35 में भी हैं अपने, इवन 40 में भी, तो ये एज ग्रुप ज़्यादा अवेयर है डिजिटल कंटेंट एंड उसके जो पावर है ना उसको लेके। सो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है वेर यू कैन शो योर स्किल कि दैट यू नो ऑल दिस थिंग्स एंड यू वर्क ऑन दिस थिंग्स। मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं हमारे इसमें BNM ही है, डॉक्टर विक्रम है, इज़ अपने डेंटल सर्जन।
ओके,
सो ही क्रिएट्स अ वेरी नाइस कंटेंट एंड वेरी नॉलेजेबल कंटेंट दैट शोज हिज ग्रास्प ऑन हिज फील्ड प्लस हिज एक्सपीरियंस कि वो कितने एक्सपीरियंस है एंड ही नोज व्हाट ही इज डूइंग।
राइट,
सो हिज कंटेंट इज ऑलवेज वेरी नॉलेजेबल। वो आपको कोई भी छोटी चीज़ें में समझाएंगे कि फॉर एग्जांपल अगर वो इम्प्लांट कर लेते हैं कि इम्प्लांट को कितना टाइम लगता है, ऐसे ये वो, तो वो नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं।
राइट,
उससे एक उनका भी एक एक्सपीरियंस जो होता है प्लस एक जो सोशल मीडिया पे जो आपको आपके एक जो व्यूअरशिप है वो व्यूज़ आपको जो व्यूअर्स है वो देख रहे हैं आपको एंड वो समझ रहे हैं कि अच्छा ये चीज़ें भी हैं ऐसी जो शायद आपको विजिट करके पता लगेगा।
हाँ, ऐसे नहीं पता लगेगा,
इसमें ये ऐसे है कि आपको घर बैठे सब कुछ पता लग रहा है कि हाँ कि ये बंदा ऐसे कर रहा है, तब उस हिसाब से अपने आपको अपने डॉक्टर को चूज़ कर सकते हो। कि जैसे मुझे मेरे पास अगर आते हैं, अगर जैसे जिम वाले हैं, जिम वालों को कपिंग का बहुत शौक है,
कपिंग
करवाने का बहुत शौक है,
मैंने भी करवाई।
तो जिम वाले को कपिंग कराने का बहुत शौक है बिकॉज उनका ना वो मसल बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। सो अब ये है कि अगर, लेकिन उनको पता नहीं है कि भी कपिंग कौन कर रहा है। सो इफ आई एम मेकिंग दिस कंटेंट टारगेटिंग कपिंग ओनली, तो जिम वालों को पता लग रहा है कि अच्छा नहीं, एक बंदा है जो कपिंग करता है, बहुत अच्छे से करता है, तो मैं उसको इजिली अप्रोच कर सकता हूँ।
राइट,
डॉक्टर से ना थोड़ा डरते भी हैं कुछ, थोड़ा आता है, डरते हैं थोड़ा बहुत कि वो उनको जाके कुछ कहेंगे तो वो ऑफेंड ना हो जाए। तो एक ये ईज भी क्रिएट कर रहा है कब ना, मुझे भी एक पेशेंट को पहुंचना इजी हो गया।
राइट, और ये आपके करियर ग्रोथ में भी बहुत हेल्प कर रहा होगा।
हाँ,
सोशल मीडिया
बहुत ग्रो करता है एक एक्चुअली व्हेन जब आप कुछ पोस्ट करते हो ना उस पर सोशल मीडिया पे,
जी
इट शुड बी वेल रिसर्च्ड। ऐसा नहीं है कि भी अपने एक्सपीरियंस से आपने पोस्ट नहीं करना कि हाँ कि मेरा एक्सपीरियंस था कि ये वो, आपको एक्सपीरियंस के पीछे एक बैकिंग रिसर्च होनी चाहिए कि यहाँ की एक रिसर्च हो चुकी है इस टॉपिक पे, स्पेशली मेडिकल लाइन में।
मेडिकल लाइन
और भी बॉक्स बहुत चीज़ें हैं पर मैं अपने मेडिकल लाइन लेके चलता हूँ कि अगर आपको एक प्रॉपर रिसर्च पीछे होनी चाहिए एंड रिसर्च कंटिन्यूसली चल रही है और सब करते रहते कुछ ना कुछ एंड आपको पता है कि जैसे मैं अगर नीडलिंग कर रहा हूँ उसके पीछे एक रिसर्च है प्रॉपर, एक बहुत सालों की रिसर्च है उस पर गिवन है और मैं आराम से उसमें मैं कह सकता हूँ कि ओके ये चीज़ें हो रही हैं, इसके ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान है, इसको नीडलिंग को इस पॉइंट में करना है, इस पॉइंट में नहीं करना। लेकिन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट यू से ऑन सोशल मीडिया बिकॉज झूठ फैलाना ज़्यादा ईजी है, सच समझाना मुश्किल होता
मुश्किल
है
हो जाए।
लेकिन एज अ मेडिकल प्रोफेशन हमारी ड्यूटी है कि हम जो भी उसमें पोस्ट करें वो प्रॉपर सच हो, रिसर्च बेस्ड हो और वो सच हो। हमारे मेडिकल लाइन में टर्म होता है एविडेंस बेस्ड।
राइट,
पहले ही हो चुका है।
तो आपके हिसाब से किस तरह का कॉन्टेंट क्रिएट करना चाहिए डॉक्टर्स को?
नॉलेज जनरेटिंग, जस्ट कोई भी
बर्स्टिंग का भी है ना, कोई मिथ्स जो हैं
मिथ्स
वो बर्स्ट करना,
बस एक ही, जिससे अभी हमारे कंटेंट क्रिएट करने का ये फ़ायदा होगा कि जो नॉर्मल लोग हैं जिनको आइडिया नहीं को मेडिकल लाइन के बारे में वो और अवेयर होंगे। बीट एनीथिंग, मैं सब कुछ अपना भी साइड कर देता हूँ, जैसे हम कुछ एक वो क्या कहते हैं एक हार्ट जो कार्डियोलॉजिस्ट है, इफ ही स्टार्ट्स मेकिंग सम कंटेंट अबाउट डेली कि हाँ कि आपको अपने हार्ट को हेल्थ करने के लिए ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, या फिर अगर वो जो प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं कार्डियोलॉजिस्ट वो क्यों कर रहे हैं, जैसे अभी स्टेंटिंग बहुत कॉमन होता है.
स्टेंटिंग
स्टेंटिंग कहते हैं वो जो अच्छा. उसमें वो एक होता है, वो डिटेल है. हाँ. तो वो अलग डिटेल है. अब ये है कि यूजली होता है कि कोई उनके पास पेशेंट आया तो उसको ब्लाइंड ट्रस्ट करना पड़ेगा कि वो जो डॉक्टर कर रहा है वो सही है. पता नहीं क्या कर रहे हैं लेकिन चलो सही है.
सही है.
लेकिन अगर जब एजुकेशन कंटेंट उसमें क्रिएट करते हैं कि हाँ कि ये उसका प्रोसीजर है, ये हम उसमें करते हैं, उसमें पेशेंट को एक फायदा है कि पेशेंट को भी एश्योरेंस है कि हाँ कि ये चीज़ बिल्कुल सही हो रही
है.
ही नोज कि हाँ कि ये सेफ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये कैसे हेल्पफुल है. यूजली नहीं पता होगा हमें, हम ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेंगे अच्छा ठीक है जो उन्होंने कहा सही होगा. हमें नहीं पता वो सही है कि नहीं है. लेकिन अगर आपने एक ऐसे एक वो कंटेंट डॉक्टर को फॉलो किया होगा उस पर सोशल मीडिया पे हु ऑलवेज गिव्स यू सजेशन जो बिल्कुल सही है, हमेशा बिल्कुल सही नॉलेज दे रहा है, सो यू हैव समथिंग टू कंपेयर विद एंड यू कैन इजिली आस्क अदर अनदर डॉक्टर कि भी जो आप करने वाले हो ये एक चीज़ है कि नहीं है. इससे एक आपकी वो क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है एक अपने पेशेंट्स के सामने.
और पेशेंट्स को भी पता है कि हाँ क्या पूछना है.
क्या पूछना है यूजुअली तो नहीं होता, बहुत डरते हैं डॉक्टर से पास आके ना, वो समझ नहीं आता क्या बात करनी है.
डॉक्टर्स डरते हैं कि
पेशेंट्स डरते हैं डॉक्टर के पास आके कि भी क्या बोलना है. अगर वही कंटेंट को कंज्यूम किया होगा उन्होंने पहले तो उनको पता है कि हमने इस बारे में बात करनी है.
राइट. और आजकल जैसे सभी हम इंस्टाग्राम स्क्रोल कर
रहे हैं,
अगर ऐसी कुछ चीजें आती हूँ और ऐसे डॉक्टर्स क्रिएट कर रहे हो कितना मजा आएगा.
बहुत अच्छा लगेगा एक्चुअली क्योंकि हमें काफ़ी चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी शुरू हो गई है थैंक्स टू सोशल मीडिया. एक मेडिकल लाइन ऐसा है जो अभी भी पूरा एक्सप्लोर नहीं है.
एक्सप्लोर नहीं हुआ. ओके ग्रेट. ओके फाइनली लास्ट क्वेश्चन ये है.
अच्छा
कि व्हाट डू यू फाइंड मोस्ट रिवॉर्डिंग अबाउट बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड हाउ डज इट इम्पैक्ट योर पेशेंट्स लाइफ.
मोस्ट रिवॉर्डिंग इज जब एवरी डे टचवुड एवरी डे अब सुनने को मिल जाता है कि हाँ कि भाई कि डॉक्टर साहब आपने जो ट्रीटमेंट की है ना उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ रहा है.
फर्क पड़ रहा है.
एक ये चीज़ सुनना ना हमारे हमें और एक मोटिवेट करता है कि नहीं ओके अगर हमें पेशेंट कह रहा है कि बहुत फ़र्क पड़ा तो हम उससे नेक्स्ट डे और ज़्यादा मेहनत करेंगे ताकि वो और पेशेंट्स भी कहें कि नहीं अब ठीक है बहुत अच्छा लग रहा है हम पूरे ठीक हैं. आई रिमेंबर अभी लास्ट ईयर मेरे पेशेंट थे एक शी वॉज हमें हमारे पास व्हील चेयर पर आते थे वो.
अच्छा.
सो हमें अराउंड 3 months लगे पूरे 3 months लगे एंड वो लेडी चल के गई वापस.
आई गेस मैंने वो रील देखी.
हाँ वो चल के गए वापस.
3 महीने व्हील चेयर पे उसके बाद चल के
तीन नहीं मतलब वो प्रॉपर स्टेज था वो मतलब कि अच्छा, जब आए थे वो व्हील चेयर पे आए थे. शी कुड नॉट वॉक एट ऑल. और जो काफी डॉक्टर्स ने भी कह दिया था कि पता नहीं चलेंगे कि नहीं चलेंगे होप सो लेट सी कुछ भी नहीं कुछ गारंटी नहीं थी. एंड हमने उस उन पर इतनी मेहनत की है आज वो चलते हैं. एंड मैंने जब उनको भेजा था कि मैंने उनको स्टिक तक ला दिया था कि एक स्टिक होती है स्टिक पे चलकर आराम से चल सकते हैं. आज वो इतने हो गए हैं कि स्टिक छोड़ के भी घूम रहे होते हैं. तो कई बार मिल जाते हैं ना तो वो ना बड़ा अच्छा लगता है देख के कि यही चीज़ें हैं जो हम एक्चुअली हमें मोटिवेट करती हैं कि
और उनकी दुआएं आपकी सक्सेस और बढ़ा देंगे.
सही में
तो अभी जैसे हम पॉडकास्ट के एंड पे आ गए तो आप का जो क्लिनिक है वो कहाँ पे है उसके बारे में बता दो एंड आप अपने इंस्टाग्राम हैंडल्स के बारे में भी सबको बता.
हाँ
और कैसे आपको कांटेक्ट कर सकते हैं.
या श्योर. जो मेरा क्लिनिक है उसका नेम है पिनेकल फिजियोथेरेपी. पिनेकल फिजियोथेरेपी क्लिनिक जो है वो है मेरा इन अमृतसर नियर अल्फा सिटी कॉलोनी ऑन GT रोड. उसको एरिया को दबुर्जी कहते हैं. इट इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर एंड आपको ईजिली मिल जाएगा. प्लस ये है कि If you want to follow my content, same handle Pinnacle Physiotherapy के नाम से मेरा content चल रहा है and उसमें you can watch my videos, you can gain knowledge about physiotherapy and you can understand what we are doing at a clinic to make you feel more better. Plus, if you want to contact me, I can easily give you my number. It's 9876144719. ये number always on है. You can call me anytime to ask anything about physiotherapy.
सो थैंक यू सो मच भैया आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए और हमें इतना ऑसम सा पॉडकास्ट देने के लिए.
थैंक यू सो मच.
तो इससे हम फर्स्ट एंड करते हैं. थैंक यू गाइस और ऐसे अमेजिंग कंटेंट के लिए डू सब्सक्राइब टू द एक्ट ऑफ फेलोशिप. बाय.